दिन भर, तारीख 16 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण की 32 सीटों पर पड़े 55% वोट।
कार्यकलाप का जो 5 साल का जो लेखा जोखा, उसका बदला हम लोग इसी में लेते हैं। आप अच्छा किए या खराब किए,
आज मौका है इनको बदला लेने का।
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बना आयोग किया रद्द, पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था की लागू। विवेचना में सुनाएंगे फयाज हाशमी और फरीदा खानम की कालजयी कृति आज जाने की जिद न करो की कहानी।
जब वो कहती हैं हाय, तो मैं ये नोट कर रहा था कि हर दफा वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अपना एक हाथ जो है उसको हवा में एक अंदाज से ले जा के हाय कहती, जैसे कि हवा में वो हाय पड़ा है और उन्होंने छूना है उस हाय को।
लेकिन पहले ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान 55% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों पर 456 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बिहार के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान हुआ। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक सिलेंडर फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने जोन 5 के उपायुक्त महेश पाटिल के हवाले से कहा है कि विस्फोट कुर्ला वेस्ट के होटल किनारा में हुआ। कुर्ला दमकल विभाग के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। फिलहाल पता नहीं चल सका है कि सिलेंडर में विस्फोट कैसे हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूर्वी सोवियत यूनियन से करीब 7,000 लोग इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ रहे हैं। पूर्वी सोवियत संघ के देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग सीरिया से स्वदेश लौटते हैं तो वे देश के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अनुमान बताते हैं कि रूस और रूसी कॉमनवेल्थ के अन्य देशों से करीब 5,000 से 7,000 लोग ISIL की तरफ से लड़ रहे हैं। जो अनुभव वे सीरिया में ले रहे हैं उसका अपने देशों में इस्तेमाल करने की इजाज़त हम कतई नहीं दे सकते। ये थे राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पश्चिम यमन में खुफिया विभाग कार्यालय की इमारत में अलकायदा के एक संदिग्ध आत्मघाती हमले और गोलीबारी में करीब 20 लोग मारे गए हैं। हुदैदा शहर में हुए एक हमले में 15 लोग घायल हो गए। हाल के महीनों में हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के बीच हो रहे संघर्ष की वजह से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट, दोनों चरमपंथी संगठनों ने यमन में बढ़त हासिल की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान ने शरणार्थियों की समस्या पर यूरोपीय संघ के रुख की निंदा की है। इससे कुछ घंटे पहले ही यूरोपीय संघ ने तुर्की से अपील की थी कि वो शरणार्थियों के अबाध प्रवाह को रोकने की कोशिश करे। इसके बदले में संघ ने तुर्की को कुछ रियायतें देने की बात की थी। कल यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में तुर्की के साथ एक एक्शन प्लान पर सहमति बनी थी, जिसमें तुर्की को 3 अरब यूरोज की वित्तीय मदद देना भी शामिल है। फ़िलिस्तीन अधिकृत क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र स्थल पर फ़िलिस्तीनियों के आगजनी के हमले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक के नाबलुस शहर में जोसेफ स्टोम को जलाना बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी अधिकारी स्थल की मरम्मत करवाएंगे। उधर इसराइल के सुरक्षा सूत्रों के अनुसार हेब्रोन के नज़दीक एक सैनिक पर चाकू से हमला करने और उसे घायल करने पर एक फ़िलिस्तीनी आदमी को गोली मार दी गई। हिंसा के और भड़कने की आशंका के बावजूद यरूशलम में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। इसराइली सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त नाकों को हटा लिया गया है, लेकिन वेस्ट बैंक के बेथलहम शहर में मुठभेड़ों की कुछ खबरें आई हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पहले ले चलते हैं आपको बिहार, जहां मतदाता आज एक बार फिर से निकले और वोट डाले। दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। लगभग 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगर साल 2010 में हुए चुनावों से इसकी तुलना करें तो इन सीटों पर लगभग 3% अधिक मतदान हुआ। दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले गए और इन सीटों पर मतदाताओं ने 456 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान हुआ। उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया,
आज के जो क्षेत्र थे वो विशेष रूप से LWE अफेक्टेड एरिया या संवेदनशील नक्सल क्षेत्र थे, जिनमें कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए। 2 मामले ऐसे थे जिसमें कि बॉम्ब पाया गया, उसको टाइम से डिफ्यूज किया गया। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे कि आईईडी मिलने के बावजूद उसे हटा दिया गया और लोगों में इतना उत्साह था कि उसके बावजूद वो वहाँ से हटे नहीं और उन्होंने पूरी तरह से वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया।
आज के मतदान का जायजा लेने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी जहानाबाद में मौजूद थे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
बिहार में दूसरे चरण में मतदाताओं का जोश देखने के काबिल था, जिन्होंने सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगानी शुरू कर दी।
बहुत उत्साह है सर, इसलिए कि हम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग अगर कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, मिला तो हम लोग वोट दिया तो, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ। हम लोग सोच रहे हैं सर कि बने यहाँ अच्छी सरकार बने।
हालांकि शहरी इलाकों में शुरुआती रुझान थोड़ा धीमा रहा, मगर ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच काफी उत्साह देखा गया। इमामगंज की सीट पर तो ऐसा लगने लगा कि यहीं पर सही मानों में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा हो।
मनोरंजन का लुप जबरदस्त उठाते हैं लोग,
बढ़िया भी तो रहता है सर, कितना बढ़िया पर्व है।
5 साल में एक ही बार तो समय आता है।
विधायक के कार्यकलाप का जो 5 साल का जो लेखा जोखा उसका बदला हम लोग इसी में लेते हैं, आप अच्छा किए या खराब किए।
आज मौका है
पब्लिक सोच लिया है कि न जाति है न यहाँ पार्टी है,
कुछ नहीं है
एक खाली बस।
इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला 10 सालों तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे जनता दल यूनाइटेड के उदय नारायण सिंह से है। बातों से ही पता चल रहा था कि दोनों के समर्थक पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं।
लगता है कि कुछ होने वाला है।
हाँ सर, होने वाला है सर।
क्या होने वाला है भाई?
जीत होने वाला है सर।
वो तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो तो हो गई। क्या मुद्दे हैं?
विकास का मुद्दा है सर।
विकास हुआ है सर?
विकास
नहीं हुआ, ये कह रहे
हैं। बहुत सामने सब चीज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में रोड है।
हुआ है सर, कुछ बाकी भी है, अभी
बाकी है जो पूरा होगा।
पूरा किया जाएगा, समय मिलेगा तब ना पूरा होगा।
समय मिलेगा, बिजली 24 घंटा हम लोग को मिल रहा है, और क्या चाहिए।
एक मतदान केंद्र के बाद दूसरे मतदान केंद्र, हर जगह लंबी कतारें।
कैसी पोलिंग चल रही है अभी?
पोल आर गोइंग पीसफुल, शांतिपूर्ण चल रहा है।
कहीं कोई
कोई अभी किसी इंसिडेंट्स नहीं है कहीं।
आप मजिस्ट्रेट?
हम सेक्टर मजिस्ट्रेट
जी। आपका नाम? जनरल
शमलदेव कुमार।
तो ये मेरे ख्याल से लास्ट बूथ होगा, इसके बाद तो फिर
बूथ इसके आगे भी है।
आगे भी
चमन बीघा है, मुठेर है, सोहे है, इसके आगे सेवनन तक है।
ये इमामगंज का एक मतदान केंद्र है जहां लोग मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढ रहे हैं।
भार्गव देवी, संजय भारती, बदन भारती।
मतदान करने आए इन लोगों का कहना है कि उनके पास मतदाता पहचान कार्ड तो है, मगर उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं।
बहुत लोग को नहीं मिल पाया यहां पे पर्ची, येलो लोग नहीं दिए हैं, उसी को हम लोग खुद खुद के दे रहे हैं।
जैसे वोटर कार्ड से नहीं है, मिलेगा थे तब ना
सीरियल मिलेगा तब।
हाँ, सीरियल नहीं मिले हैं,
वोटर कार्ड था लेकिन सीरियल नहीं है।
दूसरे चरण में 32 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कई दिग्गजों के भाग्य अब ईवीएम मशीनों में कैद हो गए हैं। अब तो 8 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि दावों और प्रतिदावों का ऊंट किस करवट बैठ पाता है। सलमान रावी, बीबीसी जहानाबाद।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पुराने तरीके यानी कि कॉलेजियन सिस्टम से ही जजों की नियुक्ति होगी। पूरी रिपोर्ट सुनिए जुबैर अहमद से।
जजों की नियुक्ति एक बार फिर से, अब जज ही क्या करेंगे, ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। दूसरे शब्दों में 20 सालों से चला रहा कॉलेजियम सिस्टम बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने इस साल अप्रैल में बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले का महत्व क्या है, यही सवाल मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सूरज सिंह से पूछा।
इसमें मेजोरिटी 5 में से 4 जजेस ने ये कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसमें जो प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो नहीं रखी गई है, और पुराना जो कॉलेजियल सिस्टम था उसको रिवाइव कर दिया यानी पुनर्स्थापित
मतलब
कर दिया।
कल से जो मंडे से जो है वो कॉलेजियम सिस्टम वापस आ गया।
आज से ऑपरेटिव हो गया है 16 अक्टूबर 2015 से।
क्या ये फैसला सरकार के लिए एक झटका है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया यूं दी।
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का आदर करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि संविधान के जो बुनियादी ढांचे को बनाकर रखे। यदि सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया और सर्वोच्च न्यायालय मानते हो फैसला ठीक नहीं है और पूर्व स्थिति में लाना चाहिए, तो लोकतंत्र में इस तरह के कोई विवाद को आर पार की लड़ाई नहीं समझी जानी चाहिए, उसको संवाद और विमर्श के द्वारा सुलझाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की नीयत अच्छी है, सरकार की भी नीयत अच्छी है, दृष्टिकोणों में अंतर है, तो उन दृष्टिकोणों को लोकतांत्रिक तरीके से हल किया जाना चाहिए।
अप्रैल में बनाए गए कानून के तहत प्रावधान ये था कि जजों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा थीं। दो हस्तियों का चयन 3 सदस्य समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता शामिल थे। लेकिन अब सरकार के पास कानूनी विकल्प क्या है? सूरज सिंह कहते हैं,
लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि हम सीनियर कोलीग्स प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके देखेंगे क्या किया जा सकता है। सरकार के पास कई ऑप्शन है। एक तो ये है कि सरकार 5 जजों के सामने इसकी रिव्यू डाल सकती है कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट थी लार्जर बेंच की वो क्यों नहीं आपने मानी। दूसरे ये कि सरकार ने जैसे शाह बानो के केस में कहा कि पंचों का कहना सिर माथे पे पथनाला यहीं गिरेगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया लेकिन हम लॉ को ही अमेंड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट को पावर है, दोबारा नया लॉ बना सकते हैं। हालांकि उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको भी टेस्ट कर सकती है वैलिडिटी के बेस पे।
वकीलों और जुडिशियरी के लोगों ने इस फैसले का आमतौर से स्वागत किया है, लेकिन कई वकील ये भी कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत है, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने की जरूरत है, जैसा कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा।
मूलभूत कारण क्या है कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाहे वो कॉलेजियम हो, तो मेरा ये मानना है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में ये स्वीकार किया है कि कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है। इसके लिए यही 5 जजों का बेंच नवम्बर में चर्चा करेगा। सरकार उस समय बेंच को सुधार के लिए सुझाव दे सकती है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
BBC India Bold।
हाल ही में कई जाने माने साहित्यकारों ने खुद को मिले पुरस्कार लौटाए हैं। इसकी शुरुआत लेखक उदय प्रकाश ने कन्नड़ विचारक M.M. कलबुर्गी की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा कर की। उसके बाद लेखिका नयनतारा सहगल ने दादरी मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पुरस्कार लौटाए। इसके बाद तो सम्मान लौटाने की झड़ी ही लग गई। ऐसे में सवाल है कि क्या पुरस्कार लौटाना ही विरोध जताने का एकमात्र तरीका है? BBC इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब आज की विवेचना। पिछले दिनों मल्लिकाए गजल फरीदा खानम ने कोक स्टूडियो के लिए 3 दशक बाद अपना सिग्नेचर गीत आज जाने की जिद न करो गाया तो लोग मंत्रमुग्ध रह गए। यूं तो इस गीत को भारत और पाकिस्तान के कई कलाकारों ने गाया है, लेकिन फरीदा खानम ने फयाज हाशमी की इस रचना को जिस बुलंदी तक पहुंचाया है उतना शायद किसी ने नहीं। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं फयाज हाशमी और फरीदा खानम की इस कालजयी कृति पर।
आज जाने कि जिद ना करो, आज जाने कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
हालांकि फरीदा खानम को भारतीय उपमहाद्वीप में गजल की मलिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे और आप जैसे बहुत से लोग उनके गाए फयाज हाशमी के इस गीत को सुनने के बाद उनके ज्यादा मुरीद हुए हैं। इस गीत को जब फरीदा खानम ने 70 के दशक में पहली बार गाया था तो भारत और पाकिस्तान के गजल प्रेमी इसे सुनते ही सम्मोहित हो गए थे। लेकिन फरीदा खानम से भी पहले इस गीत को आवाज दी थी मशहूर गायक हबीब वली मोहम्मद ने पाकिस्तानी फिल्म बादल और बिजली में।
आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात किया ना करो।
ये
सोच रही थी कि गाऊं कि ना गाऊं, क्योंकि मैंने कहा फिल्म का गाना है तो शायद मैं गा सकूं, अच्छा भी हो कि नहीं हो। तो वैसे गाया हुआ था उन्होंने, हबीब अली मोहम्मद साहब ने, तो ये भी था कि भी उनका गाया हुआ गाना, वो खुद भी बड़ा अच्छा गाते थे, खुदा बख्शे उनको। तो मैंने कहा अच्छा शायद लगे ना लगे, इसी सोच में जरा मैं रही। फिर मैं एक दिन बैठी हुई अपने हारमोनियम से, ऐसे शौकिया हारमोनियम आता नहीं बजाना, लेकिन सुर देख रही थी, तो मेरे बच्चे कहने लगे कि आप क्यों नहीं गजल गाती, गीत बड़ा प्यारा ही ढूंढ रहे हैं, बड़ा अच्छे। मैंने कहा मैं यही सोच रही थी गाऊं कि ना गाऊं। 2-3 साल हो गए थे उस गाने को ऑन एयर आए हुए, और फिर वो गाना जरा कम कम आता था रेडियो पे। तो बस मैंने कहा अच्छा गाते हैं, फिर मैंने याद किया और मैंने गाया, और पहले जरा कुछ थोड़ा सा हल्का रहा, स्टाइल पूरी अपना नहीं सकी। फिर उसके बाद मैंने कहा अपने अंदाज से गाए, फिर मैंने अपने अंदाज से गाया।
इस गीत को लिखा था 1920 में कोलकाता में जन्मे और EMI रिकॉर्ड कंपनी के लिए काम करने वाले फैयाज हाशमी ने। सुनने में ये बात अजीब सी लगती है कि इस गीत को गाने वाली फरीदा खानम का नाम तो सबकी जुबान पर है, लेकिन फैयाज हाशमी को बहुत कम लोग याद करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की कला और संस्कृति पर खासा शोध करने वाले प्राण नेवल कहते हैं।
लास्ट ईयर मेरा प्रोग्राम था KL सहगल की याद में, तो लोग KL सहगल की गजलें, डॉक्टर राधिका चोपड़ा द बेस्ट गजल सिंगर हमारे पास जो हैं, तो लोग कहने लगे जी आप जाने की जिद ना करो, ये सुनाइए। मैंने माइक दिया, मैंने कहा देखिए आज KL सहगल का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी मैं राधिका को बोलूँगा कि आपके लिए गजल गा दे, लेकिन अगर आप जितने आप बैठे ऑडियंस 300 आदमी था, एक शख्स भी अगर ये बता दे कि ये लिखी किसने थी, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये अंदाज़ा लगाइए कि मैं सबको पूरी तरह किसी ने कुछ कहा, किसी एक शख्स भी ऐसा नहीं था ऑडियंस में जो ये बता सकता कि ये फैयाज हाशमी की लिखी हुई गजल है।
फैयाज हाशमी वही शख्स थे जिन्होंने पंकज मलिक की गाई मशहूर गजल ये मौसम ये हसना हसाना लिखी थी। उनके ही लिखे गीत तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी ने तलत महमूद को एक तरह से लॉन्च किया था।
फैयाज हाशमी मेरी नज़रों में तो सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट पोइट हैं, लेकिन अफसोस ये मुझे होता है कि ना तो इंडिया में उसकी कदर हुई ना पाकिस्तान में, ही रिमेन्स फॉरगॉटन दोनों मुल्कों में। और जब मैंने याद आता है कि जो इसके गाने हैं, किस तरह ये 14 साल की उम्र में जिसने गज़ल लिखी है और कमला झरिया ने गाई, मस्तों के जो असूल हैं उनको निभा के पी, कल के लिए तू एक बूंद ना बचा के पी, फैयाज तू नया है अभी बात मान ले, कड़वी बहुत शराब है पानी मिला के पी। जो बच्चा 14 साल में ये लिख सकता है, और फिर उसने आगे चलकर क्या नहीं किया। उस तलत महमूद की जो पहली गज़ल थी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकी, फिर होठों से गुलफिशां हैं, ये दोनों फैयाज हाशमी की लिखी हुई हैं। और अभी तलत को जानते भी नहीं थे, तलत ने दूसरा नाम रख के फिर वो रिकॉर्ड बनवाया था ग्रामोफोन कंपनी को।
आज जाने की जिद न करो की खासियत है इसका अपने आप बहना। इसमें फरीदा खानम का जो कजोल या कहें मनुहार या इसरार करने का जो अंदाज है, उससे हर एक को लगता है कि ये गीत उसके लिए ही गाया जा रहा है। अली सेठी पाकिस्तान के उभरते हुए युवा गायक और मशहूर पत्रकार नजम सेठी और जुगनू मोहसिन के बेटे हैं।
फरीदा खानम साहिबा ने जब गाया इसे तो रोक के गाया, ताल जो है दीपचंदी कहते हैं, 7 मात्रे की ताल होती है, उसमें गाया इसको। रोक के गाने से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ राग एमन कल्याण मोर और लेस उस पर ये उतर आता है गाना, और अगर आप इसको राग को जहन में रख के गाएं तो फिर इसमें इमोशनल एक्सप्लोरेशन की बहुत गुंजाइश पड़ जाती। तो लिहाजा अगर आप वादी सुर जो इसका गंदार है उसको दबाएं, उसका मजा लें, उसको रोकें, उस पर ठहरें, तो एक खास सुकून सा तारी हो जाता है गाने में, जो कि फरीदा खानम साहिबा ने किया जब वो कहती हैं यूं ही पहलू में बैठे रहो, तो लफ्ज़े यूं ही जो है और जो लफ्ज़े पहलू है वहाँ एक ठहराव पैदा कर देती हैं। और क्योंकि मौजू भी उन अल्फाज का कुछ ऐसा ही है, एक वो درخواست کر رہی ہیں کہ کسی سے کہ یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو، ابھی مت جاؤ، ایک رکنے کا، ٹھہرنے کا یہ ایک درخواست ہے، تو اس کے حوالے سے جو اس کا اثر ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔
فریدہ خانم یاد کرتی ہیں کہ فیاض ہاشمی سے ان کی ملاقات اس گانے کو گانے سے کہیں پہلے کولکاتہ میں ہوئی تھی، اور فریدہ خانم کو شروعاتی پروتساہن بھی فیاض ہاشمی کی طرف سے ہی ملا تھا۔
بڑی ملاقات تھی جب ای ایم آئی ہیز ماسٹر وائز میں ڈائریکٹر تھے پروگرام کے، تو اس وقت جا کے میں ان سے ملے، ان کے ساتھ رابطہ یہ رہا کہ گانا چاہ رہی ہوں میں، 14 سال کی میری ایج ہوگی، 14-15 سال کی، تو اس وقت بڑی کوشش تھی کہ میں گاؤں میں، پھر یہاں سنا یہ بڑے شاعر بھی ہیں، سر کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور ویسے بھی بہت ملنسار ہے، اور بڑے افسروں کی طرح نہیں ملتے، سادگی سے ملتے ہیں۔ انہوں نے سنا کیا، اور واقعی اس وقت اتنی پکی آواز نہیں تھی، تو انہوں نے کہا ابھی تھوڑا سا اس میں آواز میں ذرا بچپنا سا ہے، ذرا بڑی ہو جائے تو پھر گائے تو اچھا رہے گا۔ تو اس طرح سے پھر بھی ہم نے کوشش کی، انہوں نے پھر گواہی کے بھی یہ اتنا کہہ رہے ہیں، آواز کی پختگی جو عمر کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس میں ذرا کم تھی، لیکن سب نے کچھ پسند کیا، اچھا رہا کہ بھی فریدہ نے یہ گائی، یہ چیز اچھی گا رہی ہے۔ ریڈیو سے چلتی رہی وہ غزل، لکھا بھی فیاض ہاشمی جی کا تھا وہ گانا، ہنگامے جوانی ہے۔
آج جانے کی ضد نہ کرو کی لوک پریتا کی وجہ ہے اس کے آسان الفاظ، آج کل کے ہندی اردو بولنے والے لوگ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
یہ جو لفظ ہے وہ پروڈیجی تھا بالکل فیاض ہاشمی، اور اس کے لیے قاضی نظر الاسلام نے کہا کہ کتنے آسان لفظوں میں تم اتنی گہری باتیں کر جاتے ہو فیاض بیٹا، تو یہ کوئی اور نہیں کر پایا۔ یہ مانیے یہ چیز ہے، 47 سے پہلے قاضی صاحب نے یہ ان کے بارے میں کہا تھا۔ تو اسی طرح آپ جانے کی ضد نہ کرو، یہ جو چیز ایک ایک لفظ آپ دیکھیے، ورنہ مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، کیا چیز اس نے کہی ہے، اور کس انداز سے یہ فریدہ خانم نے گایا ہے، اپنی بڑی بہن مختار بیگم سے سیکھا، ساری تعلیم اس سے حاصل کی، اور پہلی اس سے بھی پہلی چیز ہے، چوری نہ کھل جائے کہیں نسیم بہار کی، یہ گایا مختار بیگم نے، اس کے بعد اس سے سیکھا فریدہ خانم میں، فریدہ خانم ضد نہ جانے کی ضد نہ کرو، ساتھ میں یہ بھی گاتی ہیں ہمیشہ، چوری کہیں کھل نہ جائے نسیم بہار کی۔
جانے کی ضد نہ کرو صرف فریدہ خانم تک ہی محدود نہیں رہا، اسے آشا بھوسلے، اے آر رحمان، ٹینا سانی اور نہ جانے کتنے لوگوں نے پرفارم کیا ہے۔ کچھ پنڈت اس گانے میں یہ کہہ کر نقص نکالتے ہیں کہ اس میں فریدہ خانم نے شاستری گائن کے کڑے نیموں کا پوری طرح سے پالن نہیں کیا ہے۔
گویے خان صاحب لوگ جب گاتے تھے، یعنی جب کلاسیکل سے لائٹ کلاسیکل کی طرف جاتے تھے، تو اس میں ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ راگداری جو ہے یا جو لے کاری ہے اس پہ عبور اپنا دکھانا ایک فرض سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کل بھی جو خان صاحب لوگ، مثلا شفقت امانت علی خان صاحب ہیں، راحت فتح علی خان ہیں، وہ جن ٹریڈیشن سے، جن گھرانوں سے، جن جونرا میں ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جھلک ضرور آپ کو ہر جگہ ملے۔ فریدہ جی کے گانے میں ایسا نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ لے جو ہے وہ چل رہی ہے اپنے حساب سے، مگر وہ لے کے ساتھ ایک خاص ٹینشن پیدا کر دیتی ہیں، ٹینشن سے مراد یہ ہے ایک لے کو فرسٹریٹ کرتی ہیں ڈیلیبریٹلی۔ تو سم جو ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ سم پہ جہاں آپ امید ہوتی ہے آپ کو کہ یہاں پہ اب بول جو ہے وہ آ کے رکے گا، تبلے کے ساتھ ملے گا، کہ وہاں نہیں ملتا، تو اس سے ایک عجیب سی اور بڑی مزیدار قسم کی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے سننے والے میں۔
علی سیٹی بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ اور مشہور گائکہ ریکھا بھاردواج اس گیت کے باریک پکشوں پر बात कर रहे थे।
हम ये बात कर रहे थे कि क्या है इसमें, वो खास चीज क्या है। तो कहने लगी कि वो हाय जैसे कहती हैं, हाय मर जाएंगे, मैं हाय जैसे कहती हूँ। वो हाय जो है ना, उसमें कंटेन्ड है उनका वो राज। मैंने एक दिन प्रिया जी से पूछा, मैंने कहा ये आप हाय जो है ये कैसे कहती हैं, मुझे बताएं, मैंने देखना है, मैं बाजा लेके अपना। तो कहने लगी कि ये देखो ये पंचम का सुर है, उसको दिखाना है, मगर पंचम का सुर कहाँ से आ रहा है, ये देखो कि इसकी इस सुर की शुरुआत कहाँ से, रुकना जाके पंचम पे है हमने, मगर हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, क्या हम गंधार से शुरू कर रहे हैं या मध्यम से शुरू कर रहे हैं या कोई श्रुति है जो कि हम लगा रहे हैं, क्या है। तो वो उन्होंने 3-4 मर्तबा किया और मैंने देखा कि जब भी वो करती थी, एक तो ये था कि बाजे पे वो नजर नहीं आता है, दिखता नहीं था, इतनी कोई बारीक चीज है जो कि वो बार बार करती है, इट कांट बी ब्रोकन डाउन, यानी वो जो मैजिक है वो उनकी शख्सियत और उनकी रूह के अंदर है। वो हाय खासतौर का जो लफ्ज है, जहाँ वो एक सांस से, ब्रेथ से शुरू होता है, उसमें ह का जो हिस्सा है, जो हर्फ है पहला, वो जहाँ से आता है ना, उसको आप लोकेट नहीं कर सकते। जब वो कहती हैं हाय, तो मैं ये नोट कर रहा था कि हर दफा वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अपना एक हाथ जो है उसको हवा में एक अंदाज से ले जाके हाय कहती, जैसे कि हवा में वो हाय पड़ा है और उन्होंने छूना है उस हाय को।
फरीदा खानम आज 80 साल की हैं। हमारे खास अनुरोध पर जब उन्होंने टेलीफोन पर इस कालजयी रचना को गुनगुनाया तो रोम रोम में एक सिहरन सी दौड़ गई, आंखें अपने आप बंद हो गईं और जी यही चाहा कि ये क्षण कभी भी खत्म न हो।
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आज जाने की जिद ना करो, ये थी रिहान फजल की प्रस्तुति। और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें सुनते हैं। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं, क्या है आपके पिटारे में?
ये देखिए, थोड़ी देर पहले आज शंघाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार पोलैंड के लुकास कोपोट सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना कोपोट ने स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और बेलारूस के मैक्स मेनर की जोड़ी को 6-4, 7-5 से मात दी। वहीं पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, 8वीं वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल और फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा भी अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उधर अबू धाबी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन जब खराब रोशनी के कारण आज खेल रुका, तब तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट खोकर 569 रन बना लिए थे, जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 523 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। इंग्लैंड को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने का पूरा श्रेय उनके कप्तान एलिस्टेयर कुक को जाता है, जिन्होंने 263 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा यान बिल ने 63, जो रूट ने 85 और बेन स्टोक्स ने 57 रन बनाए। पाकिस्तान के वहाब रियाज ने 116 रन देकर 3 और शोएब मलिक ने 97 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अब इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर 46 रनों की बढ़त है और उसके 2 विकेट बाकी हैं। उधर डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल तो हारकर बाहर हो गई, लेकिन आज भारतीय चुनौती के रूप में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में 6ठी वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान का सामना करेंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता आपका। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान 55% मतदान हुआ। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक सिलेंडर फटने से 8 लोगों की मौत हो गई है।
विस्फोट कुर्ला वेस्ट के होटल किनारा में हुआ। फिलहाल पता नहीं चल सका है कि सिलेंडर में विस्फोट कैसे हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूर्वी सोवियत यूनियन से करीब 7,000 लोग इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर ऐसे लोग सीरिया से स्वदेश लौटते हैं तो वे देश के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। पश्चिमी यमन में खुफिया विभाग कार्यालय की इमारत में अलकायदा के एक संदिग्ध आत्मघाती हमले और गोलीबारी में करीब 20 लोग मारे गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगान ने शरणार्थियों की समस्या पर यूरोपीय संघ के रुख की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होनी तय है। तब तक मोहनलाल शर्मा को हेमंत कुशवाहा के साथ विदा दें। नमस्कार।